तो पहला किरदार क्या पड़ा? जो गद्दारियां पेश करता था, अब्दुल्ला बिन उबई। दूसरा अबू आमिर। अब तीसरा नाम है काब बिन अशरफ का। गद्दाराना सरगर्मियों का तीसरा बड़ा इमाम काब बिन अशरफ था। इसका तذکرہ भी ऊपर हो चुका है। इस शख्स ने एक तरफ मदीना में वजीफे जारी कर करके कराए के पिट्ठू पैदा कर रखे थे, और दूसरी तरफ ये मक्का वालों को मदीना पर चढ़ाई के लिए भड़काता था। इस मकसद के लिए इसने अपने असरो रसूख, अपने फ़न, शेर और अपनी दौलत को खूब खूब इस्तेमाल किया। इसकी तहरीक से अबू सुफियान और दूसरे लोगों ने गिलाफ़े काबा को थाम कर बदर का इंतकाम लेने का हल्फ किया था। तो कौन है ये काब बिन अशरफ? मदीना में हमला करना चाहता था, मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह लीजिए कि पीछे करना चाहता था। और आप नोट करेंगे कि इन लोगों ने पीठ पीछे वार किया। खुल के सामने आके मुखालफत करना बहुत कम लोगों को जुरत मिलती है इस चीज़ की, क्योंकि इसके लिए भी तो जुरत की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा अपना असरो रसूख इस्तेमाल किया, दौलत थी, खाता पीता कबीला था, तो लिहाजा इसने दूसरे लोगों को अपने साथ मिला लिया। इसी साजिशी माहौल ने, अब ये उस सवाल का जवाब है जो अक्सर लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जंगें क्यों करी। क्वेश्चन आपसे लोग पूछेंगे, नॉन मुस्लिम भी पूछेंगे, बिगड़े हुए मुसलमान भी पूछेंगे, तो अब जवाब इसका ले लीजिए। इसी साजिशी माहौल ने मुसलमानों की जमात को ख़ास हिफाजती इंतजाम इख्तियार करने पर मजबूर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागा करते थे और अपने दोस्तों को या अपने साथियों को बारी बारी पहरे पर मामूर करते। इसी दौर का वाक़या है कि एक बार आपने मजलिस आम में फरमाया, आज कोई अच्छा आदमी पहरा दे। ये इशारा सुनकर साथ भी नबी वक्कास ने हथियार लगाए और रात भर पहरा दिया। हाल ये था कि सहाबा सुबह तक हथियार लगाए लगाए सोया करते थे, और गालिबन यही वो दौर था जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ताल्लुक़ रखता है कि रिबात यौमिन फ़ी सबीलिल्लाहि खैरु मिन दुनिया व मा फ़ीहा। अल्लाह की राह में एक दिन पहरा देना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसके मुकाबले में बेहतर है। और ये कि रिबात यौमिन व लैलतिन खैरु मिन सियामी शहरिन व क़ियामिही, अल्लाह की राह में एक दिन रात का पहरा देना महीने भर के नफली रोज़ों और शबाना क़याम नमाज से अफजल है, यानी रात की क्याम और दिन के रोज़े से बेहतर है। इस खिदमत के बारे में आपने फरमाया कि इसका अजर क़यामत तक बढ़ता चला जाएगा और ये अज़ाबे कब्र से निजात का ज़रिया होगा। इसके अलावा इन साजिशों के ज़ेर असर अचानक हमले के अंदेशे से हजूर ने अपने इलाके की आखिरी हदों तक, जिनमें तदरीजन तौसी होती गई यानी वसअत होती गई, इस्लामी हदें जो थी वो फैलती चली गई, तलाया गर्दी का इंतज़ाम फरमाया। तलाया गर्दी क्या होती है? छोटे छोटे गिरोह तैयार करना, लश्कर तैयार करना, और अगर किसी जगह हालात ख़राब हों तो वो जाकर वो वहाँ मुकाबला करते हैं, ताकि दुश्मन को मालूम रहे कि इस्लामी रियासत सोई भी नहीं बल्कि चाको चौबंद है। बात समझ गए? यानी जिस तरह फौजी दस्ते तैयार करके उनको सरहदों पर छोड़ दिया जाए, अब लोग देखेंगे वो अच्छा इनकी फ़ौज है। अब कोई कहेगा जी इन्होंने हमला किया, कोई कहेगा इन्होंने पहल की, लेकिन कम अज़ कम दुश्मन को ये तो पता चल जाता है ना कि मुसलमान जाग रहा है। मदीना के पाँचवें कालम, पाँचवा कालम क्या था? जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं किताब उनको पता होगा, मुनाफिकीन। यानी जिस डिफरेंट तरीके से मदीना में इस्लाम और मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमले हो रहे थे, तो मुनाफिकीन जो थे उनका किरदार सबसे बड़ा। और हम पिछली शायद 15-20 क्लासेस में सिर्फ इन्हीं का तذکرہ पढ़ रहे हैं अभी तक। बाकी लोग इतना नुकसान नहीं देते जितना नाम के मुसलमान इस्लाम को नुकसान देते हैं। तो बहरहाल मदीना के पाँचवें कालम के लिए तहरीक इस्लामी की पीठ में छुरा घोंपने का बेहतरीन मौका मार्का है जिहाद के दौर में पैदा होता है। यूँ तो मदीना में नबी सल्लम ने 10 बरस का जो ज़माना गुजारा, इसका बेशतर हिस्सा ऐसा है कि नाजुक और हंगामी सूरत हाल यानी स्टेट ऑफ एमरजेंसी छाई रही, लेकिन हक व बातिल की बाहम आवेजिश जब जब भी थोड़े थोड़े वक्फ़ों पर बार बार ऐसा होता रहा, मारूफ मानों में जंग की सूरत अख्तियार करती, यहूद और मुनाफिकीन गद्दाराना हरकतों में लग जाते। इस्लामी रियासत के पासबानों के लिए कैसी संगीन सूरत हाल होती होगी जबकि एक तरफ शदीद माशी मुश्किलात और दूसरी तरफ मार्का हाय पे कारान को अपने घेरे में लिए हों, और तीसरी तरफ अपने अंदर के मार हाय आस्तीन, मार कौन है? सांप, मार हाय आस्तीन अपने डंक लगा रहे हों। उहद का वाक्या ऊपर बयान हुआ, इस्लामी फ़ौज मैदान जंग की तरफ मार्च कर रही है और रास्ते में साजिशों का लीडर अब्दुल्ला बिन उबई 300 आदमियों को अलग करके वापस ले जाता है। अगर हुजूर और आपके जानिसारों की जगह कोई दुनियावी ताकत इस सूरत हाल से दो चार होती कि 3,000 दुश्मनों के मुकाबले पर जाने वाली कुल 1,000 के लगभग हो, तो सपा हो और इसमें से भी 300 आदमी यका यक अलग हो जाएं और बकिया 700 में भी कुछ अफराद शरंगेजी के लिए घुले मिले रह जाएं, तो शायद वहीं दिल टूट जाते और हिम्मतें जवाब देती। टूटती हैं हिम्मतें जब बाकी साथी ना आए। आपके भी बाकी साथी ना आए हो तो आपका भी दिल लगता है क्लास में। ये फितरी बात है कि जब साथ बंदा चलता है तो साथ ही रहना चाहिए। चंद लोगों का पीछे रह जाना बाकियों के सफ़र को भी ख़राब कर देता है। यही वहाँ हुआ। ये नहीं कि उन 300 ने जंग जीतनी थी, लेकिन जातों को देख कर जाने को दिल करता है। ये इंसान की फितरत है। चुनाचे बनू सलमा और बनू हरसा के लोग दिल शिकस्ता होकर वापसी का सोचने लगे, लेकिन सहाबा की हिम्मत बंधाने से रुक गए। मगर अल्लाह पर ईमान, रूह सदाकत की बरतरी का यकीन, अखलाकी कुव्वत की कामयाबी का तसव्वुर और गैबी इमदाद पर भरोसा अलम बरदारान इस्लाम का असल सरमाया था। इनकी कुव्वतों में ज़रा भी इज़्महलाल पैदा ना हुआ। इज़्महलाल क्या होता है जी? यानी डबल माइंडेड हो जाना, अच्छा नहीं करते करते हैं, यानी ढीले नहीं पड़े। और वो इसी अज़म के साथ मैदान उहद की तरफ बढ़ते चले गए। फिर मैदान उहद में फिर जब सख्त वक्त आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर उड़ी, तो मुनाफिकीन ने इस तजवीज़ के लिए हामी पैदा करने चाहे कि अब्दुल्ला बिन उबई की मिन्नत समादत करके इसे आमादा किया जाए कि वह अबू सुफियान से अमान ले दे। फिर इस मौके पर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इनकी कमज़ोरियों पर गिरफ्त करने के लिए एक तरह की जो हजीमत दी, इस पर इन लोगों ने यह कहना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी होते तो क्यों हजीमत खाते। हजीमत क्या होता है? शिकस्त होती, कमज़ोर हो जाते। ये तो दुनियावी हुक्मरानों का सा मामला हुआ कि कभी जीत होगी कभी हार। यानी लोग सोचते हैं कि नबी को कभी हार नहीं होगी, दीनदार को कभी नुकसान नहीं होगा, अच्छा काम करते हुए कभी बुरे हालात नहीं होंगे, तो ये दुरुस्त सोच नहीं होती। इस प्रोपेगंडे के नतीजे में मुसलमानों के अंदर शुबहात पैदा हो गए। बाज़ लोग इस तरह सोचने लगे कि हम जब अल्लाह की राह में लड़ने गए थे और अल्लाह के पैगंबर की क़ियादत में थे, तो फिर आखिर क्यों हमें ज़िक पहुँची, यानी नुकसान क्यों हुआ। इसका जवाब देते हुए क़ुरान ने क्या मैसेज दिया? हुवा मिन इंदियन फुसिकुम, ये तो तुम्हारे अपने नफ्सों की तरफ से है। सूरत आल इमरान 165। ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, यानी तुम्हारी बास कमज़ोरियाँ रंग ले आई हैं। तो क्या पता चला? जहाँ नाकामी होती, जहाँ कमज़ोरी होती है, उसमें सारा कसूर दूसरों का नहीं होता, बहुत सारा हमारा अपना भी होता है। और फिर कोई जंग ऐसी नहीं हुई जिसके पहले, जिसके बीच में और जिसके खात्मे पर इन छुपे रुस्तमों ने गद्दारी के जौहर ना दिखलाए हों। जहाँ अमलन कोई कारनामा अंजाम ना दिया जा सका, वहाँ ज़ुबान के निश्तर चला चला कर तहरीक इस्लामी की रगें काटने और मदीना की रियासत का जिगर छेदने की कोशिश की गई। लोगों की हिम्मतें पस्त करना, इनको डरावे देना, हजूर से फरेब करने की पट्टी बढ़ाना, इन्फाक से रोकना, इस्लामी फ़ौज का मजाक उड़ाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत पर हर्फ गिरी करना, गरज के किसी पहलू से कोई कसर ना उठा रखी। कभी आप बैठकर थोड़ा सा सोचें, बल्कि इस मौके पे सोच लें कि नबी सल्लम की ज़िंदगी को अगर आप अपने सामने रखें, कैसी ज़िंदगी थी? हम अपने लिए क्या चाहते हैं? कोई हमारी मुखालफत ना करें, हमारे घर वाले हमसे खुश रहें, सब हमारी तारीफ़ें करें, राज़ी खुशी रहें, हम जो सोचें वो हो जाएं, जिसको बुलाएं वो आ जाएं, जिसको रोकें वो रुक जाएं, यही सोचते हैं ना। तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी तो ऐसी नहीं थी। आज मुकाम कितना है ये सोचें, दर्जे कितने हैं और जन्नत में आला मुकाम कितने हैं। तो याद रखिए, बाज़ दफ़ा हमारी कोशिशों के अच्छे नतायज नज़र आते हैं ना, तो हम सोचते हैं अब हम कामयाब हैं, बट उस कामयाबी के साथ हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाती है, ढीले हो जाते हैं। कम अज़ कम हालात ख़राब हों तो अंदर से एक चोट तो पड़ती है ना, हम सीधे हो जाते हैं एक हद तक। ज़रा से हालात ठीक हुए हम कहते हैं देखा है ही हम इतने अच्छे, प्लानिंग इतनी अच्छी करते हैं, तरीके इतने अच्छे हैं, कितनों को फ़ायदा हो रहा है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो फिर हम ढीले होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि दुनिया में आपको अपनी कोशिशों का अच्छा रंग मिले। दुआ ये किया करें कि रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतों वफ़िल आखिरती हसनतों वक़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए बेहतरी फरमा, अच्छे तरीके से हमारे लिए अच्छा मामला फरमा, इसलिए कि आप और मैं अपने आप को अल्लाह की नज़रों में सुरखरू देखना चाहते हैं। एक और मौका गद्दारियों का, गज़वाए खंदक और गज़वाए अहज़ाब। इस पांचवें कालिम ने सबसे बढ़कर अपने जौहर जंगे खंदक या अहज़ाब के मौके पर दिखाए। मैदान बदर के अव्वलीन मार्के में कुरैश की कुव्वत को कारी ज़र्ब लग चुकी थी। इसका इंतकाम लेने के लिए उन्होंने बड़ी तैयारियों से फ़ौज कुशी की और उहद में मुकाबला हुआ, लेकिन वो पूरी तरह बाजी सर किए बगैर ही पलटने पर मजबूर हो गए। 5 हिजरी में वो अपनी और अपने सारे हामी और मदीना के साथियों की कुव्वतें जमा करके और मुख्तलिफ कबाइल को उकसा उकसा कर लाए। गोया हर तरफ से अहजाब यानी लश्करों ने आकर मुसलमानों को घेर लिया। ये बड़ा ही फैसला कुन मार्का था और इसके बाद कुरैश और दूसरे दुश्मनान इस्लाम का जोर टूट गया और मुसलमानों ने मुदाफियाना, मुदाफियाना क्या होता है या बताएं? एक होता है इकदाम, आप पहल करते हैं। मुदाफियाना क्या होती है? दिफा करना, डिफेंसिव। ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव वार की, ठीक है। तो मुसलमानों ने मुदाफियाना पॉलिसी को तर्क करके दुश्मनों की सरकूबी के लिए पेशकदमी की पॉलिसी अख्तियार की। ये नुक्ता भी नोट करें, जिसको नहीं याद वो याद कर ले। गज़वे खंदक आखिरी जंग थी जिसमें दुश्मन आया था, और उस जंग की वापसी पहला के नबी ने कहा था अब हम पहल करेंगे। गज़वे खंदक से पहले की जंगें मुदाफियाना जंगें थीं, डिफेंसिव थे। दुश्मन आता था, मुसलमान डिफेंड करते थे, दिफा करते थे। पर बार बार की इन हरकतों के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब हम ऑफेंसिव होंगे, हम कदम उठाएंगे। जब एक को हक के पहल करने का, तो हम क्यों ना करें? तो ये तो बहुत दुनिया का भी असूल है। आप हमेशा ही तो दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, कभी आपको भी होता है। और यही है जीतने का तरीका। लिख लें, गज़वे अहज़ाब तक के हालात गज़वे अहज़ाब से बाद वाली जंगों के हालात से यकसर मुख्तलिफ थे, क्योंकि जंगे अहज़ाब के खात्मे के दिन ही दर हकीकत फतेह मक्का का दरवाज़ा खुल गया। यहाँ आपके मेरे लिए भी अमल है। जब तक आप अपने दीन के किसी काम के लिए डिफेंसिव रहेंगे ना, अगला बंदा आपके ऊपर रोब डालेगा। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, हमें भी समझाएं। देखिए, उस वक्त तो ज़ाहिरन दुश्मन की जंग थी ना, अल्लाह के नबी दीन का काम कर रहे थे ना, तलवारें उठाई हुई थी, दिफा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। जब दुश्मन आए और आप उसको स्माइल पेश करें, नहीं, हम अच्छे हैं, हम अमन वाले हैं, पीसफुल हैं, तो दुश्मन सर पे चढ़ता गया। जिस जंग में अल्लाह के नबी ने पहल की, दुश्मन की आंखें हो रही, ये भी है। अब वो तो थी जंगी बातें, आपकी मेरी जंगें क्या है? हमारा ये दीन का काम, नमाज पढ़ना, अपना हक लेना रिश्तेदारों से, यानी कह लीजिए कि अल्लाह के हक़ को ज़िंदगी में तस्लीम करना। अब आप हर वक्त डिफेंसिव, नहीं, सच्ची नहीं, बस छोड़ दूंगी, बस 1 साल रह गया, बस अभी आई, बस अभी गई, नहीं करूंगी, हाँ अब आज के बाद नहीं, बस आखिरी है, बस हमें बताऊंगी। तो घर वाले क्या, शहर, ख़ानदान, दोस्त सब कहेंगे क्या बात है, कब होगा, अभी भी जा रही हो, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी नमाज़ें पढ़ रही हो। और आप हो जाए, ये तो नहीं छूटना, अब आप बात कर लें, देखिएगा कैसे खामोश होंगे। ऑफेंसिव क्या होता है? आप अपना हक लेते हैं। मिसाल है कि मैं इधर आपको पढ़ाने आई, अब घर में मेरी सास हो सकती हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे शौहर हैं, और इसी तरह मेरी कुछ दोस्तें मेरी उम्मीद लगाए बैठी हैं। तो मैंने कहूँ बस ना, मैं क्या, बस जा रही हूँ ना, बस मैं आज जा रही हूँ, फिर नहीं, बस मैं अब 2 माह में छोड़ दूंगी, बस अब देखें ना, मैं जल्दी से आ जाऊँगी, मैं पूरे 2 बजे आ जाऊँगी, ये मेरा डिफेंसिव तरीका है। जब मैं ऐसी बातें करूँगी ना, वो और चढ़ाई कर, जिसको मेरी जबान में कहते हैं दबे को और दबाओ, ये दबे को दबाना है असल में डिफेंसिव। और आप एक दिन बैठ के सबको बता दें ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। आप ये बात करें कि मैं आपका कौन सा हक नहीं दे रही, आपका हक दे रही हूँ, आपका दे रही हूँ, आपका दे रही हूँ, तो ये मेरा हक है, इट्स माई टाइम, ये होगा आपका ऑफेंसिव। वल्ला ही इसके बाद कोई नहीं बोलता। और हमेशा दुनिया में लीडरशिप के दर्जे पे वही लोग पहुँचे जिनको अपने मकसद का यकीन था। अगर कायदे आज़म डिफेंसिव होते तो पाकिस्तान नहीं बनना, तो वो ऑफेंसिव हुए थे। हाँ है, ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, यस वी नीड टू, दो कौमी नज़रिया क्या था, ऑफेंसिव थे तो बन गया, डिफेंसिव होते तो आज तक वहीं बैठे होते। ज़िंदगी में हमेशा वही जीता है जिसको अपनी जीत का यकीन है। और किसी की बात याद आती है कि वो खिलाड़ी जो घर से ही सोच के जाए कि हार के आना, उसको कौन जिताएगा? तो अपने दीन के और अपने दुनिया के कामों में हमेशा जुरत लाएं। यकीन आपके अंदर है, यकीन मुहकम अमल पे हम, यही 2 बातें अल्लामा इकबाल ने कही हैं। आपको यकीन मुहकम है कि इस वक्त आपको बैठने से फ़ायदा हो रहा है? आपको यकीन मोहकम है कि आपका घर से निकलना अल्लाह के दीन सीखने के लिए फ़ायदा मंद है? आपको लग रहा है? तो बस ये यकीन दूसरों को भी आपकी तरफ से मायूस कर देगा। और अगर आपको यकीन ही नहीं, हम यहाँ से उठ के एकदम वॉशरूम जाने वाले हैं, हमारी चाल से लोग कहते हैं पीछे हो जाओ, उनको यकीन है कि हमारा वॉशरूम में जाना लाजमी है ना। बच्चा गिर रहा है, माँ उसको उठाने के लिए भाग रही है, यकीन है। तो आप बेयकीनी से कोई मैदान नहीं जीत सकते, चाहे दीन का। अब हमारा मैदान दीन का है तो हम मिसालें भी सीख ही देते। दुनिया का काम है, कारोबार शुरू करता है बंदा, उसको यकीन है कि मैं ये काम कर जाऊंगा तो वो कर लेगा, दुकान भी चल जाएगी, सौदा भी डल जाएगा, कारोबार भी ठीक होगा। और अगर वो के चलना कोई नहीं, होना कोई नहीं, गाहक आना कोई नहीं, करता हूँ, अच्छा क्या आना तो है नहीं किसी ने, सौदा क्या रखना है, अच्छा सब्जियाँ क्या लगानी है, खरीदनी तो है नहीं किसी ने, तो वो कभी नहीं करेगा। तो ढिल मिल यकीन के लोग बहुत ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। खैर, अब आगे इसका ततीमा देखिए। इस फैसला कुन मार्के के पस मंज़र में जिन अनासिर ने साजिशी सरगर्मी दिखाई, इनमें सरे फहरिस्त बनू नज़ीर के यहूद को रखा जा सकता है। इनमें से जो लोग खैबर में जाकर जमे, उन्होंने हालात के उतार चढ़ाव पर बराबर निगाह रखी। जब इन्हें जंग उहद का हाल मालूम हुआ और मुसलमानों को बड़ी सख्त सूरत हाल पेश आई, और कुरैश अगरचे कामिल फतह का सेहरा नहीं बांध सके लेकिन खासा जोर दिखा के आए, तो उन्होंने मुतहरिक होकर तारीख के मद्दो जजर को तेज़ करने का फ़ैसला किया। बनू नज़ीर में से सलाम बिन अबिल हुकैक, सलाम बिन मुशकम, हुई बिन अहतब, कनाना बिन रबी जैसे नामी गरामी से मुराद क्या है जी बताइए? मशहूर बहुत सारे नामी गरामी मशहूर सरदार निकले। उन्होंने बनू वायल में से हौजा बिन कैस, अबू अमारा और बास साथियों को साथ लिया। मक्का जाकर उन्होंने कुरैश को मदीना पर चढ़ाई करने की रग़बत दिलाई और अपनी हिमायत की पेशकश की। फिर ये लोग बनू गतफान के हाँ पहुँचे और इनको भी तैयार किया। फिर दूसरे मुतफरिक कबाइल में घूमे, कुरैश ने भी कबाइल में अपने पूरे असर को इस्तेमाल किया। चुनाचे 10,000 सिपाहियों ने मदीना का मुहासरा कर लिया। आगाज़ जंग से कबल हुई बिन अख्तब ने काब बिन असद से साजबाज करके बनू कुरैज़ा का माहदा तुड़वा दिया जो नबी अक्रम सल्ला वसम के साथ था। इस खबर को सुनकर मुसलमानों को सख्त परेशानी लाहक हुई और बनू कुरैज़ा की तरफ से हमले का खतरा पैदा हो गया। औरतों और बच्चों की हिफाजत करने के लिए हजूर ने फौरी तौर पर 300 साथियों का दस्ता तैयार किया। और इधर मुनाफिकीन और थुड़दिले लोगों ने बेएतमादी बुजदिली की बातें फैलाना शुरू की और बाज़ घरों की हिफाजत के बहाने मोर्चे से जाने लगे, यहाँ तक कि तान किया जाने लगा कि एक तरफ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसरो किसरा की सल्तनत की चाबियाँ पाने की बिशारत देते हैं और दूसरी तरफ हाल यह है कि हम में से कोई शख्स आज रफ़ा हाजत के लिए भी इत्मीनान से नहीं जा सकता। आप इमेजिन कीजिए ज़रा तबुक के सफ़र को। आप यकीन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये वाक़यात और फिर लोगों के कमेंट्स, हर दौर में नबी का दौर है, लोग कमेंट करने वाले मौजूद हैं, तबसरा नबीस, सिर्फ उनका काम बातें छाँटना होता है। कहते थे लो जी ये कैसरो किसरा को फतह करने निकले हैं और आज वॉशरूम में जाने तक की इजाज़त नहीं है। आज भी लोग आपको कहेंगे आपके क्वेश्चन से क्या होना है, खाम खाब शोर मचाते हैं, कोई सुनता है, कोई मानता है, कोई आता है। तो मेरा ना आपका काम ना मान ना मनवाना ना सुनाना ना बताना, हम तो अपनी ज़ात के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह के पास जाकर ये कह दें कि मालिक हम जो कर सकते थे हमने किया, हमने जो कोशिश करनी थी वो की, अब उसका किसी को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, हमें इससे कोई नहीं, हमें इससे फ़ायदा हुआ था। अब उसी जंग का एक वाक्य, एक मर्द ऐसा भी हुआ कि ऐन मार्के के वक्त जब के औरतों की क़यामगाह की हिफाजत का माकूल इंतज़ाम न था, एक यहूदी मुश्तबे हालत, मुश्तबे क्या, मशकूक जिस पर शक हो सकता है, मुश्तबे हालत में चक्कर लगाता हुआ पाया गया। हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब ने एक चोब ली, चोब किसको कहते हैं, लकड़ी ली बड़ी सी जैसे वो गार्डर से नहीं होते, चोब ली और जाकर इस शख्स का काम तमाम कर दिया। आज किसी औरत में इतनी ज़रूरत है कि डंडा पकड़ कर जाकर किसी को मार दे, बहुत मुश्किल है। इस्लामी तहरीक के पासवानों को सबसे ज़्यादा इस्तराब अंगेज़ हालात इसी मौके पर पेश आए, मगर अलमबरदारान हक के लिए अल्लाह ताला की ताईद ख़ास थी, इसलिए एक तरफ खंदक की नई दिफाई तदबीर, दूसरी तरफ कुरैश और बनू कुरैज़ा की साजबाज तोड़ने में नईम बिन मसूद का हकीमाना एक कमाल, ये जंग खंदक के ख़त्म होने के असरात जो थे कैसे हुआ वो बताया जा रहा है, तीसरी तरफ हजूर और आपके तरबियत याफ्ता कायदीन और पूरी जमात का मजबूत मुजाहिदाना किरदार, और चौथी तरफ मशीयत की भेजी हुई आंधी ने, यानी अल्लाह की तरफ से आंधी चल गई थी, ये नतीजा दिखाया कि दुश्मन यकायक मैदान से रुखसत हो गया, जैसे पल भर में बदलियाँ छट जाती हैं। पड़ी हुई है गज़वे खंदक सीरत में से, आगे इस बुक का आखिरी टॉपिक आपको था तलवारों की छाँव में, सारी जंगें हम इकट्ठी पढ़ेंगे, बहुत दिलचस्प टॉपिक होगा। जो नबी की जंगों के हालात से हम सीखते हैं ना, वो शायद वैसे ना सीख सके। बहरहाल फिर एक मौका गज़वे तबूक का है, जबकि मदीना के पांचवें कालिम यानी बोलिए मुनाफिकीन ने अपने फ़न्ने लतीफ़ के कुछ शाहकार पेश किए। हरकल रोम हजूर का नामा दावत पाने के वक्त से ही परेशान था, बीच में अरबाब साजिश ने भी दरबार रोम में रसाई हासिल करके इसे उकसाने की कोशिश की। खबर उड़ी कि हरकल ने 40,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। हालात कुछ अजीब थे, कहत का ज़माना था, दरख्तों में फल तैयार थे, मौसम सख्त गर्म था, फ़ौज बड़ी तादाद में ज़्यादा फासले पर रवाना की जानी थी, मगर माली पहलू बहुत कमज़ोर था और सवारी साजो सामान और नान और नफका की हद दर्जा किल्लत थी। इसीलिए इसे जैश उसरत का नाम दिया जाता है। जैश क्या होता है? लश्कर। और उसरत तंगी, तंगी वाला लश्कर। मुनाफिकीन ने इस हालत को देख कर और ये अंदाज़ा करके इस मार्के में गनीमत हाथ आने का इम्कान भी कम है, अदम तावुन यानी तावुन ना करने की पॉलिसी अख्तियार की और झूठे उजर घड़ घर कर बैठ रहे। इस पहलू से इसे गज़वा फादेहा, फादेहा क्या होता है? पोल खोलने वाली, मुनाफिकीन का पोल खोल देने वाला मार्का भी कहा जाता है। उजरात की मज़ेहका अंगेज़ नौयत का अंदाज़ा इससे हो जाएगा कि अलजुद बिन कैस ने आकर नबी सल्लम से कहा कि लोग जानते हैं कि मुझे औरतों की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत है और मैं डरता हूँ कि बनी अलसफ़र की औरतों को देखकर फितने में मुबतला ना हो जाऊं, लिहाजा मुझे माजूर रखिए। ये लोग ख़ुद तो रहे ही थे, हर किसी से कहते फिरते थे कि खुदा खुदा करो, दीवाने हो गए हो, इस झुलसती गर्मी में तुम जिहाद करने चले हो। वक़ालु ला तनफिरु फिल हर्र, सूरह तौबा 81। उन्होंने एक अड्डा स्वैलम यहूदी के मकाम पर बना रखा था, इसमें लोग जमा होते तो इनको गज़वे में जाने से रोकते। आखिर इस अड्डे का नापाक वजूद ही ख़त्म कर दिया गया। इधर अब्दुल्ला बिन उबई की फ़ाल शख्सियत ने सनीयतुलवदा में ज़ुबाब की जानिब यहूदियों और मुनाफिकों पर मुश्तमिल अलग लश्कर शर पसंदाना मकासद के लिए तरतीब दे लिया, जो ख़ासी तादाद में था, लेकिन यह लश्कर हजूर के साथ रवाना ना हो सका। फिर लश्कर की रवानगी के बाद इन लोगों ने एक और फितना पैदा कर दिया। हजूर ने हज़रत अली को अहले बैत की देखभाल के लिए बतौर ज़ाती नायब के छोड़ा। ये लोग कहने लगे कि आजकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत हज़रत अली के बारे में मुकद्दर है, इसलिए इनको साथ नहीं लिया जाता। क्या मतलब? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा है अली से, इसलिए उनको साथ नहीं लेकर जाते। हज़रत अली की गैरत को इस निश्तर ने उभार दिया और इख्तियार दिया और हथियार लगा कर आप अल्लाह के नबी से जा मिले। आप देखिए, हर दौर में लोग बातें ज़रूर करते हैं, ये तो आप मान लीजिए। हर तरफ लोगों को सिर्फ ये होता है कि कोई लूप होल तो मिले, कुछ तो अंदर की चीज़ नज़र आए जिसको हम लेके दूसरों को परेशान कर सकें। बहरहाल अब फिर क्या हुआ? हज़रत अली बातें सुन के बैठे नहीं, चल पड़े और मुनाफिकीन की शरंगेज़ी का किस्सा बयान किया। हजूर ने इन्हें समझा बुझा कर वापस भेजा कि मदीना में इन लोगों से खदशा है। क्यों रखा था अपने हज़रत अली को पीछे? कि पता चले कि तबूक में गए हैं तो पीछे जंग शुरू हो गई। तो हज़रत अली पीछे एक किस्म के नायब थे, पता क्या चला कि जब कहीं जाएं तो उसके पीछे एक ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए कि पीछे के हालात में भी किसी किस्म की अगर कमी बेशी हो तो उसको भी देखने वाला कोई मौजूद हो। तबूक पहुंचकर साथ जाने वाले मुनाफिकीन और कुछ ना कुछ तादाद फितना अंगेज़ी के लिए हमेशा शरीक होती थी। उन्होंने हक के सिपाहियों को ये कहकर डराना शुरू किया कि बनो असफर के शेर दिल जंग आजमाओं को तुम लोगों ने अरबों पर क्यास कर रखा है, कल तुम पर अपनी गलत फहमी का हाल खुल जाएगा, जबकि तुम सब के सब गुलाम बन के जकड़े हुए होंगे। बास परस की गई तो कहने लगे, हम तो मजाक मजाक में ये बातें कर रहे थे, कोई संजीदा मामला ना था। यानी मुसलमानों के हौसले इस तरह से तोड़े कि अच्छा, अगर तुम्हें पहले फतह होती थी तो वो तो तुम्हें मक्का वालों के मुकाबले में होती थी, अब तो तुम एक सुपर पावर के मुकाबले में आ गए हो। लेकिन सहाबा के ईमान देखिए बिल्कुल भी मुतजलजल नहीं हुए। रूमी लश्कर तो आया ही नहीं था, लेकिन इस मुहिम से एक तरफ रूमियों को अंदाज़ा हो गया कि मदीना पूरी तरह चौकन्ना यानी होशियार है और हमारे मुकाबले पर आने की ताकत रखता है, दूसरी तरफ ईला जरबा और दूमतुल जुंदल के इलाके जेर असर आने पर आ जाने से बैरूनी हमले के इम्कान कम हो गए। اس سفر میں دو مواقع پر حضور نے چشموں سے بلا اجازت پانی پینے سے فوج کو منع کر دیا، لیکن بعض منافقوں نے حکم عدولی کر کے اپنے دلی روح کو عیاں کر دیا۔ کون سے چشمے تھے، کسی کو یاد ہے؟ ایک چشمہ حضرت صالح کی اونٹنی کا، کہا وہاں سے پیو جہاں سے لوگ پیتے تھے، اس سے نہیں پیو جس سے اونٹنی پیتی تھی۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اور پی لیا۔ اس سفر میں عقبہ کے مقام پر حضور کو ہلاک کر دینے کی سازش ناکام ہوئی، جس کا حال اوپر آ چکا۔ اہل نفاق کی اتنی غداریوں اور سازشوں کے باوجود حضور اس مہم میں کامیابی حاصل کر کے واپس ہوئے اور بڑی شان سے آپ درگزر کرتے گئے۔ تین مخلص ساتھی کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، جو تساہل یعنی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، انہوں نے اعتراف قصور کیا اور ان کو 50 سن تک احکام الہی کے انتظار میں معاشرے سے الگ رہنا پڑا۔ اس امتحان سے یہ لوگ اس خوبی سے گزرے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زرعی کردار سے مالا مال کر لیا، ان کی سچی توبہ قبول ہوئی۔ مگر منافق کہتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ہماری طرح گزر کر دیتے، خامخواہ اپنے آپ کو ببال میں ڈال لیا، اب بھگتیں۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ ہوشیار ہیں، دوسرے کمزور ہیں۔ اور نو انسانی کو فلاح کا راستہ دکھانے والی ہستی کو اندازہ کیجئے، اب یہ ساری بات کا خلاصہ ہے، اندازہ کیجئے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی تحریک کو کیسے کیسے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور نو انسانی کو فلاح کا راستہ دکھانے والی ہستی کو پیروان موسیٰ، کیا مطلب؟ موسیٰ کی پیروی کرنے والے، فالوورز آف موسیٰ، اور ان کی امت کے منافقین کے ہاتھوں کیسی کیسی غدارانہ کاروائیوں سے سابقہ پیش آیا۔ مگر اسلامی ریاست کا پھیلاؤ بڑھتا ہی گیا، تحریک حق کی شعائیں فضا میں پھیلتی ہی چلی گئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گونجتا ہی گیا۔ اخلاص پھولا اور پھلا، مگر غداریوں کے جھاڑ جھنکار پھل تو کیا لاتے، ان کی جڑیں ہی کھد گئیں۔ تو پھر میرے آپ کے لیے کیا عمل ہے؟ اپنی کوششوں میں اخلاص پیدا کریں۔ دیکھیے بظاہر انسان کمزور پڑتا ہے، ہائے اب یہ ہوگا، اب تو اسلام ختم ہو جائے گا، اب تو یہ کام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، امام مالک کا وہ جملہ نوٹ کر لیں کہ ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ ضرور باقی رہے گا۔ جب انہوں نے موتا امام مالک لکھی تو مارکیٹ میں جعلی موتا بھی آ گئی، ان کی دیکھا دیکھی پیروڈی تھی، لوگوں نے آ کر ان کو خبر دی کہ وہ خوب تو آپ کی کتاب کے مقابلے پہ اور بھی آ گئیں، کوششیں جیسے آپ کوئی کام کریں تو کوئی دوسرا بھی وہی کرنے لگ جائے تو آپ کے کام کی ویلیو کم ہوگی نا۔ تو اس پہ امام مالک نے یہ خوبصورت جملہ بولا تھا کہ ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے ہوگا وہی باقی رہے گا۔ اور آج دیکھیے مارکیٹ میں صرف موتا امام مالک ہے، وہ جھوٹی کوششیں اور وہ پیروڈی، وہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو یہ سارا ٹاپک ہمیں بہت کچھ سکھانے والا تھا۔ غداریاں ہر دور میں ہوں گی، فتنے ہر دور میں ہوں گے، دشمنیاں ہر دور میں ہوں گی، بٹ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر کسی راستے پہ چلے تو چلتے ہی جائیں، چلتے جائیں، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر۔ کبھی حالات اچھے ہوں گے، کبھی برے ہوں گے، کوئی بات نہیں، درختوں پہ کبھی بہت پتے ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، لیکن پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر ان درختوں پہ بالکل ہی خزاں آ جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس پہ بہار بھی تو آتی ہے نا۔ تو دعا کیا کریں کہ نبی کے اس مشن میں ہم چلتے ہی جائیں، اس پہ ہم کبھی رکے نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔